نہیں کہا یہ تمہارا رائٹ ہے, تم کہہ سکتے ہو. محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی پیغمبر کو فالو کرنا ہے, یہ کل کی مجلس کا اینڈ بھی تھا اور آج کی. اور یہاں پہ رک کے پھر ایک بات بتا دوں, یہ ہمارا اپنا ٹاپک ہے کربلا سے ظہور تک. یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی سب سے پاورفل دعا کا نام کیا ہے. بہت دعائیں ہمارے پاس, دعائے کمیل, دعائے مجرول, دعائے تبسل, دعائے جوشن کبیر, اور ایک بہت اہم دعا ہے جسے عام طور پہ لوگ اس لیے اگنور کر جاتے ہیں کہ اس کی ورڈنگ ذرا سی سخت ہے, دعائے جوشن صغیر. یہ دعائے جوشن کبیر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دعا اس سینس میں کہ دعائے جوشن کبیر کے زیادہ تر بینیفٹ آخرت کے ہیں, دنیا کے ہیں زیادہ, اور جوشن صغیر کے زیادہ بینیفٹ دنیا کے ہیں. جادو سے بچاتی ہے, میجک سے پروٹیکشن, نظر بس سے بچاتی ہے, جس کو آج کی سائنٹیفک دنیا میں ہمارے یوتھ نہیں مانیں گے مگر اسلام میں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کسی کو نظر لگا سکتا, اور دشمنوں سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو پروٹیکٹ کرتی ہے دعائے جوشن صغیر. جب لبنان کے اس جہاد میں لوگوں نے پوچھا تھا لیڈر سے کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کریں, کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف ہمارے لیے دعائے جوشن صغیر پڑھا کرو. تو اب یہ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے, الحمدللہ معصومین ہماری دنیا کے بینیفٹ والی بھی دعا ہم کو دی اور آخرت والی بھی, مگر سب سے اسٹرانگ دعا جو آدمی کے سارے پرابلم کو سالو کر دے, وہ چھوٹی سی روایت. کسی نے آج باقاعدہ ریٹن میں مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ روایت پڑھ دیجئے, میں ویسے ہی بہت زیادہ آپ حضرات کے سامنے گلٹی فیل کرتا ہوں کہ بہت سی ریپیٹ باتیں مجھے پڑھنا پڑ رہی, لیکن جو کہ یہ میرے ٹاپک میں بھی, اور بہت چھوٹی سی بات. اب آپ دیکھیے گا کہ میں اسے کتنا شارٹ کر رہا ہوں, جن لوگوں نے اس سے پہلے یہ حدیث مجھ سے سنی, دنیا کی بہترین دعا اور اسٹرانگیسٹ دعا. مدینے کے اندر رسول اللہ کے زمانے میں ایک چور بھی رہتا تھا. مدینہ ایک بڑا سٹی ہے, بڑے سٹی کے اندر ہر پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, آفیسز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, کھیت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, چور بھی ہوتے ہیں, چور بھی تھا. اور جب کبھی اسے کہیں سے نیوز ملتی تھی, اب آج کی دنیا تو ساری پلاسٹک کرنسی والی دنیا, اب آج کے فراڈ کے طریقے بھی بالکل الگ, انٹرنیٹ پہ ہر وقت آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ بی کیئرفل, لیکن جیسے کراچی یا پاکستان میں اب تک کیش کی ہینڈلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس تاریخ کو لوگوں کو سیلری ملتی ہے اس تاریخ کو یہ پک پاکٹ والے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو چور کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان ٹچ رہے. یہ چور جہاں اس کو اطلاع ملے کہ آج مدینے میں کسی کے پاس پیسے آئے ہیں, فوراً آدھی رات کو مڈ نائٹ جا کے اس کے گھر چوری کرے گا. اسے نیوز ملی کہ مدینے میں کوئی نئی فیملی شفٹ ہوئی. رسول خدا کے زمانے میں یہ ویزا, پاسپورٹ, امیگریشن, یہ سارے پرابلم تو نہیں تھے, لیکن جب تک رسول مکے میں تھے لوگ مکے میں نہیں آتے تھے, کیونکہ مسلمان آلریڈی مکے میں انڈر فائر یا انڈر ٹارچر ہیں, لیکن جب رسول مدینے پہنچے اپنی گورنمنٹ بن گئے, تو پورے عرب سے وہ لوگ مدینے آنے لگے جو اپنی فیملی میں صرف ایک آدمی اسلام قبول کیا, پوری فیملی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. آج بھی یہی ہوتا, وہ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں ابو جہل بائیکاٹ کرتا تھا مومن کا, آج مومن مومن کا بائیکاٹ کرتا. اگر آپ اپنی پالیسی بنا لیں کہ شریعت کے مطابق ہر وہ مس گیدرنگ جو شریعت کے اگینسٹ جا رہی ہے میں اس کو اٹینڈ نہیں کروں گا, یاد رکھیے گا کوئی ایک مومن بھی اپنے گھر کی مکس گیدرنگ کو ختم نہیں کرے گا, آپ کا بائیکاٹ ہو جائے گا. آپ نہ کسی شادی میں جا سکیں گے, نہ کسی برتھ ڈے میں جا سکیں گے, حتیٰ یہ کہ شاید 22 رجب کی نیاز میں بھی نہ جا سکیں. پہلے یہی کام ابو جہل کرتا تھا, آج کے دور میں یہی کام مومن آل محمد کر رہے ہیں کچھ لوگ. خیر, اب یہ ہے کہ مدینے میں روز آنا, نئی فیملیز مائگریٹ کر کے آتی ہیں پورے عرب سے, کیونکہ مدینہ اپنا شہر, ایک پروٹیکشن یہاں پہ ملا. کچھ چور بھی مسلسل ان ٹچ رہتے ہیں, پتہ چلا کہ آج کوئی بہت پیسے والی فیملی آئی ہے, آدھی رات کو مڈ نائٹ, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, بس آج آ گئے وہ لوگ تو جائے گا. جیسے پہلے زمانے کا ایک پروفیشن تھا جو آج تو ختم ہو گیا, وہ یہ تھا کہ لوگ ڈیڈ باڈیز کا کفن چوری کرتے, تو ہر وقت ان ٹچ رہتے تھے کہ کون آدمی مرا, کب دفن ہوا, हम और आप तो क्वायरी करते हैं भाई वो साहब कब दफन होंगे ताकि हम नमाज वहशत पढ़े। चोर पूछता है वो साहब कब दफन होंगे ताकि मिड नाइट को जाके कब्र खोद के कफन निकाले। तो खुलासा ये है कि चोर ने आधी रात को उस घर पे अटैक किया। अटैक किया चोर है, बहुत ही खामोशी और साइलेंट तरीके से घर के अंदर जंप लगाई। अब ये इंग्लैंड जैसे घर तो नहीं थे उस जमाने में और हो भी नहीं सकते अरब में, वेदर के एतबार से हर जगह का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां खुले खुले घर होते। चुनाचे इसने जंप लगाई, घर के अंदर गया, पहले तो खुला हुआ सहन ओपन टू स्काई, और फिर रूम्स हैं, पहले ही रूम जो नजर आया वहां गया, पहले इसने विंडो से देखा कि घर के अंदर कितने मर्द हैं, कितने लोग हैं, रेजिस्टेंस ना हो जाए। जब कमरे में निगाह डाली तो खुश हो गए, इसने देखा इस घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक 18 साल की लड़की, बड़ी हसीन जमील खूबसूरत और एक्चुअल 18 साल की है। तो बर्थडे पे 118 की भी हो जाए तो कैंडल 18 ही की जलती है, वो नहीं वाकन 18 की 18। चुनाचे देखा के एज के एतबार से और अपनी खूबसूरत मेंबर की तौहीन भी ना हो जाए और बात भी आगे बड़े बड़ी हसीन जमील खूबसूरत लड़की और अकेली है, ऐसा लगता है इसकी फैमिली में कोई आदमी या तो जिंदा नहीं है और या फिर सब काफिर हैं, या अकेली मुसलमान हुई तो यहां पे आ गए। मगर असल बात यह थी कि पूरे उस रूम में प्योर गोल्ड बोरियों में भरा हुआ रखा हुआ है, पूरे पूरे बैग हैं प्योर गोल्ड से भरे हुए, डबल बेनिफिट। आज इतनी दौलत मिल रही है और साथ में लड़की अकेली, आधी रात है, शैतान तो हर आदमी के साथ लगा रहता, इसीलिए तो कहा गया कि नामहरम को देखना ही शैतान के लिए दरवाजा खोलना एंट्री का। ये जुमला मेरा नहीं है, शैतान का ही। जब हजरत नूह ने पूछा था कि ऐ शैतान आखिर तू लोगों को कैसे मिसगाइड करता है, नहीं लोग नहीं मोमिन को, मोमिन तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, कहा कि हां मोमिन को बहकाना या गुमराह करना या मिसगाइड करना तो फिर जॉब है मेरे लिए, खुद शैतान कह रहा। अलबत्ता अगर मोमिन कभी तीन में से कोई एक मिस्टेक करे, और नंबर एक अगर किसी नामहरम औरत के साथ ऐसी जगह चला जाए जहां कोई और ना हो, चाहे वो कुरान पढ़ने क्यों ना गए, वो तो फिर शैतान का काम है कि किस तरह कुरान से हराम की तरफ डाइवर्ट करे, और बड़ा एक्सपर्ट है इस काम में शैतान। तो अब वही बात, घर अकेली लड़की, कोई मर्द नहीं, कोई उसको सपोर्ट या प्रोटेक्शन देने वाला नहीं, और फिर साथ में दौलत, दोनों चीजें मुझे मिल रही। आगे बढ़ो, कैसे ही आगे बढ़ो, नमाज शब का वक्त तो आ चुका, यानी मिडनाइट के बाद आया, आधी रात से नमाज शब का वक्त आ जाता, बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी तो कहते हैं कि जस्ट आफ्टर ईशा नमाज नमाज शब का टाइम आ गया। चुनाचे यहां तो 5 बजे नमाज शब का टाइम आ जाता आफ्टरनून में, आजकल विंटर में। तो खुलासा यह कि नमाज शब का जो टाइम था, कोई आदमी उठा होगा, तिलावत कुरान कर रहा, नमाज शब में 40 मोमिनीन के नाम लिए जाते हैं, कुछ लोगों को ये मुश्किल लगते हैं, और मैं ऐसे असातिदा, मेरे टीचर्स ऐसे थे, पूरी पूरी दुआए जोशन कबीर, दुआए कुमैल, पूरी पूरी दुआए मशलूल और दुआए अबू हमजा सोमाली, हर रात नमाज शब के कुनूत में पढ़ा करते थे। तो खैर, अब नमाज शब के बेनिफिट इतने हैं, जिन्हें पता चल जाए तो जब कभी उसे टाइम मिलेगा, बात को शॉर्ट कर दू, इसलिए यहां वाजिब नमाज के अंदर भी लोग सेकेंड्स की काउंटिंग रखते हैं, ये नहीं कि फला साहब ने एक मिनट ज्यादा पढ़ा दे, नहीं 15 सेकंड ज्यादा पढ़ा दे। मुझको पहले दिन कहा गया कि 1 मिनट एंड 35 सेकंड आपने ज्यादा तकरीर की, तो खैर बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी परफेक्ट कैलकुलेशन, बस अल्लाह करे कि कयामत में अल्लाह भी इतनी कैलकुलेशन से ना चले कि एक एक हमारा छोटे से छोटा गुनाह पकड़े, नहीं वहां पे हमें अल्लाह से लीनियंसी चाहिए, अरे खुदा 2-4 गुना पकड़ तो 1000-2000 माफ कर दे, यही तरीका यहां भी हमें करना पड़ेगा, मगर ये डिफरेंट टॉपिक। नमाज शब के लिए कोई खड़ा हुआ और तिलावत कुरान शुरू कर, और कुरान की एक आयत पढ़ी, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बे ही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। कुरान में एक आयत, वह अम्मा मन तगा व असर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मावा। कुरान बता रहा है जन्नत और जहन्नम का डिवीजन किस क्राइटेरिया पर होगा, अब जब मैं लैंड करता हूं आपके मुल्क में, वहां पे दो बोर्ड लगे होते हैं, ब्रिटिश सिटीजन या ईयू वाले इधर से जाए और बाकी सारे सिटीजन इधर से जाए, तो ये डिवीजन कयामत के दिन कैसे होगा। खुदा ने कहा कि जो दुनिया की जिंदगी के फायदे उठाता और अल्लाह के अगेंस्ट चलता है, जहन्नम उसके लिए बनाई गई। वह अम्मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सन अनिल हवा, और जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा कि क्या जवाब दूंगा, और उसने अपने आप को गुनाह से रोका, फइन्नल जन्नता हियल मावा, जन्नत उसके लिए। ये आयत सुनी। सैकड़ों आयतें हम सुनते हैं, कभी असर नहीं होता, लेकिन आधी रात का वक्त हर तरफ साइलेंस, डार्कनेस और तन्हाई, बस ये आयत ऐसे कान में गई कि जैसे कान से निकल के सीने में तीर की तरह लगी, जो कयामत के दिन से डरा। वनहा नफ्सा अनिल हवा, और अपने आप को गुनाह से रोका। डरना बेकार है अगर डरने के बाद भी उतने ही गुनाह आदमी करे जितना डरने से पहले कर रहा। मैंने तो एक जमाने में 20 साल अजाब कब्र की मजलिसें पढ़ी। कब्र वाला बापू ऐसे ही नहीं कहलाया, ड्रैकुला ऑफ इस्लाम ऐसे ही नहीं कहलाया, जहन्नम का दरोगा ऐसे ही नहीं कहलाया। 20 साल अजाब कब्र, फिशार कब्र, पुले सिराज, जहन्नम, और वाकान देखा कि लोग डरते थे, मगर डरने के बाद जैसे ही गेट से बाहर निकले इमाम बाड़े के, वही तरीका पुराना हुआ, तो वो तो बेकार है। कुरान का डरो व नहा नफ्स, और अपने नफ्स को रोको। भाई ये सुना इसने, एक बारिश के दिल पे असर हो, खुदा बंदा मैं अपने आप को रोक रहा हूं सिर्फ तेरे इस वादे की वजह से जो कुरान में तूने किया, फाइनल जन्नत ही अलबावा, इसको जन्नत मिलेगी। और वहीं से इसने यू टर्न मारा और घर से बाहर चला गया। लेकिन जब ये आ रहा था तो चोर बन के आ रहा था, तो बड़ा अलर्ट, बड़ा कॉशियस, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। अब तो इसने अपना इरादा कैंसिल कर दिया, जो वापस गया तो इतना केयरफुल नहीं था, किसी चीज से टकरा गया, पैर लग गया, आवाज आई, एकदम इसने देखा कि कमरे में बैठी हुई लड़की डरी और उठ के विंडो की तरफ आई। ये घबरा के जंप लगा के बाहर गया, बात खत्म हो गई। अगले दिन सुबह मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने ये पहुंचा। फजर की नमाज के बाद रसूल खुदा पब्लिक को बिठा लेते हैं, एक छोटी सी स्पीच होती है और उसके बाद लोगों के सवाल जवाब। ये चोर भी रसूल के पास पहुंचा, किसी को क्या पता कि ये चोर है, और जाके बैठ गए। अचानक इसने देखा कि बाब रहमत से, अगर ये रसूल खुदा का मेंबर है तो बाब रहमत लेफ्ट साइड पर है, बाब रहमत से वही लड़की आ रही है 18 साल की, जिसे कि अभी 3 घंटे पहले घर में अकेले देख चुका, वही लड़की पहचान ली। अब ये डरा, इतनी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उस जमाने में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, अनलेस ये कि कोई इमरजेंसी हो। इसको क्या इमरजेंसी हो गई कि इस टाइम पर आई, शायद इसने मुझे पहचान लिया और मेरी कंप्लेन लेके आ रही। वो करीब आई और कहा कि या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में एक चोर आया था, मैं उसकी कंप्लेन लेके आई और यकीन हो गया कि आज मैं पकड़ा गया। दिल में उसने एक बात कही, खुदा बंदा हजारों दफा मैं चोरी करके आया, हमेशा मैं शैतान के रास्ते पे चला हूं, ना कभी पकड़ा गया, ना कभी जलील हुआ, ना पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट हुई, हमेशा बच के निकलता, और आज पहली बार मैंने तेरे वादे पे भरोसा किया और पहली बार शैतान को किक आउट करके तेरे रास्ते पे चला, और पहले ही दिन 3 घंटे के अंदर मैं पकड़ लिया गया और मेरी तौहीन हो रही। अब दिल में तो हर किस्म का ख्याल आता, मगर जब इसने डिटेल सुनी, औरत ने कहा, लड़की, औरत नहीं लड़की 18 साल की, या रसूल अल्लाह कल रात को मेरे घर में चोर आया और मैं इसकी कंप्लेन लेके आई, लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दू, मैं फुला कबीले की शहजादी, मेरा बाप कबीले का सरदार था, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो पूरा कबीला उसके अगेंस्ट हो गया। उसने मुझसे कहा और मेरी मां से कि अब यहां रहना ठीक नहीं, अभी तो लोग फिर भी शेख और सरदार होने की वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब चेंज हो जाएंगे, बेहतर है कि हम अपना कबीला छोड़ दें, इस्लाम की खातिर ये कुर्बानी दे। अब सरदार था तो प्रॉपर्टी बहुत थी, एसेट्स बहुत थे, मेरे बाप ने सारी चीजें बेची और सबको प्योर गोल्ड में कन्वर्ट किया, उस जमाने में बेहतरीन सेविंग गोल्ड होता था, सारी प्रिपरेशन थी कल मेरे बाप को मूव करना, आज अचानक बाप और मां दोनों एक साथ मर गए। मौत तो किसी के कंट्रोल में नहीं, कितने केसेस मैंने देखे कराची में भी और दारुसलाम में भी कि बूढ़ा बाप बहुत बीमार मरने के करीब, डॉक्टर्स ने कहा आईसीयू में है, डॉक्टर ने कहा इसके वारिसों को बुला लो, अब ये नहीं बचेगा। जवान जवान सेहतमंद बच्चे बाप को देखने आए वो मर गए, और वो बूढ़ा बाप जो आईसीयू में था तमाम डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 24 घंटे में मर जाएगा, वो फिर बिस्तर से खड़ा हो गया। तो मौत का तो किसी को नहीं पता, मेरा बाप मेरी मां दोनों मर गए। कल ट्रेवलिंग करना है, आज मौत हो गई। अब पुराने जमाने में लाइफ बड़ी सिंपल थी, आधे घंटे में उनको दफन कर दी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बाप इतना पावरफुल आदमी, वो तक डर रहा था अपनी कौम से, तो मैं तो अब अकेली रह गई हूं, एक 18 साल की बच्ची। अगर कल मेरी कौम अटैक करके सारा माल छीन ले तो मैं क्या करूंगी? मैं जैसा मेरे बाप ने प्लान किया मैं निकल जाऊं। अच्छा, कबीले वाले सोच भी नहीं सकते थे कि जिसके घर आज मैयत होगी नेक्स्ट डे वो लड़की चली जाएगी। चुनाचे मैं जल्दी से निकल आई, सारी दौलत लेके कल मदीने में एंटर हूं। अब मैं अकेली हूं, कोई हमारा रिश्तेदार और जानने वाला कुटुंब वाला यहां नहीं। वैसे पैगंबर के शहर में जरूरत भी नहीं है कि आदमी का कोई सपोर्टर, सबसे बड़ के मुश्किल कुशा मौजूद हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से बात हो रही है। मैंने घर अरेंज किया, उसमें उतरी, पूरे मेरे बाप की प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालिक हूं। बीवी को अपने शौहर के एसेट्स में सिर्फ 12 point something मिलता, बेटी को अपने बाप की सारी जायदाद मिलेगी अगर वो अकेली एक ही औलाद, सारा मेरे पास। मैं लेके आ गया, घर में बैठी, नींद नहीं आ रही थी कि मदीने में मैं नहीं हूं और इतनी दौलत है मेरे पास। ठीक है, मदीना मुसलमानों का शहर है, लेकिन क्या मुसलमान एक दूसरे के साथ फ्रॉड नहीं करते? मदीना मोमिनों का शहर है, क्या मोमिन एक दूसरे का गला नहीं काटते? अरे मोमिन की तो इतनी हिम्मत है कि हक़े फातिमा अगर उसको मिले तो वो हक़े फातिमा को भी हजम कर जाता है। खुमस क्या, जो शहजादी है कौनैन के हक के ऊपर हाथ डाल दे और कब्जा कर ले। तो अब ये मुसलमानों का शहर है, लेकिन डर तो था। अब मैं सोच रही हूं क्या करूं, आधी रात को एक चोर भी आ गया। अब वो चोर तो सामने ही बैठा हुआ, उसने कहा हो अब तो बिल्कुल मारा गया, शायद इसने पहचान लिया। लेकिन अगला जुमला कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं इतना डर गई थी कि अपनी जगह से मैं खड़ी भी नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ। वो चोर आया, विंडो के करीब पहुंचा, वहीं से वापस चला गया। भाई दुनिया में बहुत से इमामबाड़े हैं कि जहां पे विंडोज हैं लोग आके झांकते हैं। अच्छा, ये सादिक साहब और ड्राकुला और इस्लाम को वापस चले जाते हैं। वो समझ में आया, उसका एक रीजन है, एक वैलिड रीजन। मगर ये चोर आया, इसने देखा कि मैं अकेली है, सारी दौलत, और वापस चला गया। खैर या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता वो क्यों गए, लेकिन ये एक वाकया मेरे लिए इनफ लेसन है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके शहर में मेरी प्रोटेक्शन का इंतजाम आप करेंगे? पैगंबर ने कहा यकीनन मैं करूंगा, ये मेरी ड्यूटी। मगर देखो, एक तो यह है कि कोई गार्ड तुम्हें दिया जाए, मगर वो कितने दिन रहेगा और कब तक रहेगा? बेहतरीन प्रोटेक्शन यह है कि तुम अकेली हो, शादी तो करना ही है, मैं तुम्हारी शादी क्यों ना कर दूं, शौहर मिलेगा शौहर। अर रिजालु कवामून अला निसा, ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ने मर्दों को रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि अपनी बीवियों को फुल प्रोटेक्शन दे। वो एक लॉजिकल सोल्यूशन भी है, शादी के लिए तैयार हो, कहा या रसूल अल्लाह शादी तो करना ही है, आपकी मर्जी। कहा मैं तुम्हारी शादी करा दूं, कहा इससे अच्छी बात क्या। चारों तरफ देखा पैगंबर, अब अगर हमारा मजमा होता हम में से हर एक उचक उचक दे, या रसूल अल्लाह हमें भी देख लीजिएगा, हम भी मौजूद हैं, हमारी जाने भी अटेंशन पे करें। और यही हो रहा था वहां पे, या तो फिर भी बाई लॉ एक के बाद दूसरी शादी मुश्किल है, मदीने में तो कॉमन चीज थी। पैगंबर ने सबको देखा, सब ऑलरेडी मैरिड थे, फकत ये चोर ऐसा था जो अब तक अनमैरिड था, क्योंकि चोर लोग शादियां करते ही नहीं थे, ये सीक्रेट होता है। अगर बीवी आ गई तो डर रहता है कि पकड़ मारा दे, चुनाचे वो अब तक बगैर शादी के था। पैगंबर ने देखा, कहा कि ऐ शख्स, तू अब तक अनमैरिड है जो इस्लाम में एक बुरी चीज है, तेरी शादी इससे क्यों ना कर दू। कहा या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी है। वही पैगंबर ने निकाह पढ़ाया, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए, कहा घर जाओ आज से तुम शौहर बीवी। ये चोर घर में आया बीवी के, और आते ही जो शुक्र के सिजदे में गिरा तो ये सिजदा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। बीवी ने घबरा के कहा खैरियत है? क्या तुम उससे सेटिस्फाई नहीं हो? कहा कि नहीं, मैं तो अपने अल्लाह के वादे के बारे में सोच रहा हूं। कल रात को मैंने अल्लाह के वादे पे भरोसा किया तो अल्लाह ने मुझे तुम भी दिलवा दी, ये सारी दौलत भी मुझे मिल गई। अल्लाह के वादे पे भरोसा करने से जो मैं पहले हराम और गुनाह करके ले रहा था वही सब मुझे मिला, मगर हलाल और जायज तरीके से मिला। ये खाली उसका वाकया नहीं, ऐसा साहिबान ईमान जरा अल्लाह पे भरोसा करके देख ली। झूठ बोल के जो पैसा आता है वो कोई हैसियत नहीं रखता है, सच बोल के उससे ज्यादा आएगा। खुमुस रोक के जो दौलत बढ़ती है, खुमुस दे के उससे ज्यादा दौलत में इजाफा होगा। फ्रॉड और चीटिंग करके जो आदमी कमाता है, हराम चीजों का बिजनेस करके जो आप और मैं, या आप और मैं से मतलब हम और आप नहीं है, ये तो एक स्टाइल है एड्रेस करने का, इससे ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के वादे पे भरोसा, और अल्लाह ने आपसे वादा नहीं किया, क्या अल्लाह ने आपसे आपके वादा किया आपके कान में अल्लाह के कह दिया? अल्लाह ने जो वादा किया थ्रू रसूल किया है, यानी इस वादे पे भरोसा करने का मकसद यह है कि आपका ट्रस्ट रिसालत पर साबित हो रहा कि या रसूल अल्लाह हमें यकीन है कि जब आपने ये कहा है तो ये सच होगा। हम और आप तो हलाल और हराम छोड़ने को तैयार नहीं, एक दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, और हुसैन अल्लाह के वादे पे इस तरह अमल किया कि अपने जिगर के टुकड़े लाके कर्बला के मैदान में कुर्बान कर दिए। एक जुमला हमारे यहां मजलिस में अक्सर पढ़ा जाता, मैं उसी जुमले को रिवर्स में करके पढ़ रहा हूं। ये जुमला द डे आफ्टर टुमारो उस मजलिस में भी आएगा। ज़ैनब को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत न थी जितनी हुसैन की औलाद से थी। अली अकबर ज़ैनब का बेटा नहीं है, मगर ज़ैनब ने अपने बेटों से बढ़ के अकबर को चाहा और अकबर का ख्याल किया। ठीक, ये जुमला तो जनाब अली अकबर के मसाइब जो तीन दिन बाद आएंगे, दो दिन बाद, कल जनाब कासिम, परसों फिर हजरत अब्बास, फिर जनाब, लेकिन अब इसी को जरा रिवर्स की। ज़ैनब को अकबर से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि अकबर हुसैन का बेटा है, बहन अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती। मगर क्या खाली ज़ैनब हुसैन से मोहब्बत करती? हुसैन ज़ैनब से मोहब्बत नहीं करते? अरे इतनी मोहब्बत जब हुसैन ज़ैनब से करते हैं तो हुसैन भी अपने अकबर से ज्यादा ऑन और मोहम्मद का ख्याल करते हों। जब ज़ैनब हुसैन की औलाद के लिए इतनी कुर्बानी देने को तैयार है तो कैसे मुमकिन है अगर ज़ैनब ने हुसैन से ऐसी मोहब्बत की कि आज तक दुनिया में किसी बहन ने भाई से इतनी मोहब्बत नहीं की, तो हुसैन ने भी ज़ैनब से इतनी ही मोहब्बत की कि दुनिया में आज तक किसी भाई ने अपनी बहन से इतनी मोहब्बत नहीं की हो। और ज़ैनब अगर हुसैन की वजह से अकबर पे अपनी जान कुर्बान कर रही है तो हुसैन भी ज़ैनब के ऑन मोहम्मद का इतना ही ख्याल कर रहे हैं। आज कर्बला के उन शहीदों का तस्किरा होने जा रहा है जो ये बता रहा है कि हुसैन ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता है। मगर अजीब बात यह भी सुन ली, क्या ना मोहम्मद कर्बला के शायद ओनली शहीद है बनी हाशिम में जिनका मातम उनकी मां भी करने को तैयार नहीं थी, बल्कि अगर कोई और मातम करता तो रोक देती थी, मेरे ऑन पर मत रो, मेरे मोहम्मद पे मत रो, मेरे अली अकबर का मातम करो। कर्बला के ये दो नन्हे मुजाहिद जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे। अब जरा देखिए कि मसाइब के दरमियान शहीदों के जिहाद की डिटेल बताने का टाइम नहीं होता, गम का बयान है तो कैसे बताया जाए कितना जिहाद किया, तो एक जुमला काफी। जाफर तैयार का पोता अगर जिहाद करेगा तो किस शान का जिहाद होगा? हैदर कर्रार का नवासा अगर जिहाद करेगा तो किस शान का जिहाद होगा? मगर यह भी अजीब बात, ज़ैनब ने अपने बेटों पर ये दो रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी शबे आशूर। शबे आशूर, आशूर की रात आई, हुसैन ने मगरिब की नमाज के फौरन बाद चिराग गुल करके मर्दों का एक इम्तिहान और एक टेस्ट लिया। ठीक है, वो तो आप सुनते हैं। अब मिडनाइट के बाद हुसैन शबे आशूर, उसके मसाइब तफसील से आखिरी रात को पढ़ूंगा, लेकिन मिडनाइट के बाद हुसैन अब लेडीज को, कर्बला की सैदानियों को, कर्बला की बीबियों को चेक करने निकले कि उनकी क्या हालत। हर खेमे में हुसैन ने कुछ ना कुछ देखा, वो मर्दों का इम्तिहान था, एक मीटिंग बुलाई, चिराग गुल किया और फिर इम्तिहान लिया। ये औरतों का टेस्ट लिया जा रहा है कि हुसैन हर एक के खेमे के करीब से जा रहे, खेमे के बाहर से देखते हैं। आप में से 90% मजमा आज भी करबला में जाके खेमागाह की जियारत करता है तो ये हिस्ट्री उसके जहन में होती है। ये ज़ैनब का खेमा है, ये हजरत अब्बास का खेमा है, वो जनाब उम्मे फरवा और कासिम का खेमा है, सारे खेमों की आप जियारत करते हैं। जब मेरा मजलूम आका ज़ैनब के खेमे के करीब पहुंचा, खेमे के अंदर एंटर नहीं हुए, बाहर से देखा तो बड़ा अजीब मंजर देखा। ऑन जो एज 10 साल की होगी, मोहम्मद जिनकी एज 9 साल की, 9 और 10 साल के बच्चे, हमारे और आपके बच्चे भी, हमको पता है कि एज ऐसी है। मगर हुसैन ने देखा कि ज़ैनब ने अपने दोनों बेटों को अपने सामने बिठाया, मगर आम तरीके से नहीं बिठाया। जो कल आशूर की सुबह का वाकया था वो अभी से शुरू हुआ। एक के सर पे जाफर तैयार का मामा रखा, एक के सर पे हैदर कर्रार का मामा रखा। और दो बातें, दो रिस्ट्रिक्शन डाल रही हैं अपने बेटों पर। कहा बेटा उन्हों मोहम्मद, कल ऐसा जिहाद करना, ऐसा जिहाद करना कि दुनिया को पता चल जाए कि जाफर तैयार का पोता मैदान में आया, दुनिया को पता चल जाए कि खैबर का किला फतह करने हैदर कर्रार का नवासा मैदान में आया। लेकिन खबरदार, अरब दुनिया का तरीका है कि हर मुजाहिद, सारे अरबों का तरीका, मैदान में जाता अपना इंट्रोडक्शन कराता, मैं कौन, खबरदार अपनी जबान से अपना इंट्रोडक्शन न कराना। बेटा ऑन ऐसा जिहाद करना, बेटा मोहम्मद ऐसा जिहाद करना कि तुम अपनी जबान से न कहो, दुश्मन पुकार उठे, अरे ये जाफर तैयार दोबारा कहां से आ गए, अरे ये हैदर कर्रार दोबारा कहां से आ गए। अपनी जबान से खुद ना कहना तुम्हारा जिहाद ऐसा हो। और अगर आप जरा इसको इस बात से मिला ले कि बनो मैया के कितने लोग मेरे मौला की तलवार का मजा बद्र ओहद में चखे हुए, और दूसरी पाबंदी ये लगाई कि बेटा मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है और मैंने तुम्हें पाला है कि कल जिहाद करते करते तुम फोरात पे तो बड़े आराम से कब्जा कर लोगे। बच्चे हैं तो क्या हुआ, किसके बेटे और किसके नवासे और किसके पोते हैं, फोरात पे तो बड़े आराम से कब्जा कर लोगे। बेटा होना मोहम्मद, मुझे पता है तुम लोग बहुत प्यासे हो और कल के जिहाद के बाद तो तुम्हारी प्यास और बढ़ चुकी होगी, लेकिन बेटा जब फोरात पे कब्जा करना तो खबरदार असगर से पहले पानी ना पीना। बच्चे तो हैं, ऐसा ना हो कि फुरात पे कब्जा हो और इतनी प्यास लग रही हो कि पहले पानी पी लो, बेटा माँ दूध ना बख्शेगी। अगर मुझे पता चला कि मेरा असगर प्यासा है और मेरे ओन ने पानी पी लिया। दोनों बच्चों ने हाथ जोड़े रोते हुए कहा माँ कल देख लेना तेरे लाल कैसा जिहाद करते हैं। और फजर की अजान हुई, आशूर का जिहाद शुरू हुआ, हर थोड़ी देर के बाद कोई लाशा आ रहा। और जब कोई लाशा आता, ज़ैनब बड़े जलाल के आलम में ओनो मोहम्मद को देखती, बेटा ओन तू अब तक जिंदा है, बेटा मोहम्मद तू अब तक जिंदा है, अरे मेरे घराने के लाशें आने लगे, अरे औलादे अकील के लाशें आने लगे, अरे दूसरे जवाना ने बनी आशिफ तू अब तक जिंदा है। हर बार ज़ैनब बड़े जलाल के आलम में देखती है। और एक बार जब ओनो मोहम्मद खेमे में आए और माँ को सलाम किया तो नाराजगी के आलम में ज़ैनब ने अपना मुंह फेर लिया। अज़ादारों, ना इससे पहले किसी मजलिस में एक रिक्वेस्ट मैंने की है और ना आइंदा किसी मजलिस में रिक्वेस्ट करूंगा, आज कर रहा हूं। और वो ये है कि आप किसी और का मातम करें कि ना करें, आज ओनो मोहम्मद का मातम जरूर कीजिए। ये वो बच्चे हैं जिनकी माँ भी उनका मातम नहीं कर रही थी। अकबर का मातम तो किया ज़ैनब ने, अब्बास का मातम तो किया गया, ओनो मोहम्मद का मातम आप जरूर कीजिए। माने जलाल के आलम में चेहरा फेर लिया। बच्चे समझ गए हैदर कर्रार की औलाद है। घबरा के कहा अम्मा ऐसा लग रहा है तू हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। ज़ैनब ने कहा कि भला मैं कैसे नाराज ना हूँ, अरे मेरे घराने के लाशी आ रहे, अब तक मेरा ओन जिंदा कैसे है, अब तक मेरा मोहम्मद जिंदा कैसे है, मैं तो तेरे लाशों का इंतजार कर रही। दोनों शहजादों ने रोते हुए हाथ जोड़ कहा अम्मा किसी से पूछ ले। हर मरतबा मामू के पास जाते हैं और कहते हैं कि मामू हमें मख्तल में जाने दे, लेकिन मामू इजाजत नहीं दे रहे। अम्मा मामू से इजाजत तू दिलवा दे, फिर देख तेरे बेटे कैसा जिहाद करते। जैनब अपने खेमे में अपनी जगह से खड़ी हुई, एक हाथ से उनको थामा, दूसरे से मोहम्मद का बाजू थामा, हुसैन के खेमे में आई और एक जुमला कहा जो मेरे उस्ताद इस तरह पढ़ते थे। एक मरतबा कहा, भैया आज बहन भाई के पास नहीं आई है, आज फातिमा जहरा की बेटी हैदर कर्रार के बेटे के पास आई है और एक सवाल लेके आई। भैया तेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया, हर सवाली के सवाल को तूने पूरा किया। आज फातिमा जहरा की बेटी एक हाजत लेके आ रही है, बता मेरी हाजत पूरी करेगा कि नहीं। हुसैन ने कहा, जैनब वादा है, बता तेरी क्या हाजत। कहा, मेरे बच्चों को मख्तल में जाने दे, मेरे बच्चों को मरने दे, मैं इन बच्चों का लाशा देखना चाहती हूँ। जो जैनब के दिल पे अकबर का नाम सुन के कयामत गुजरती है, वो हुसैन के दिल पे आना मोहम्मद का नाम सुन के कयामत गुजरी। एक मरतबा कहा, जैनब अरे मैं किस दिल से अपने ओन और अपने मोहम्मद को मख्तल में जाने दे। जैनब ने कहा, भैया तू वादा कर चुका है। एक बार हुसैन ने कहा, वादा किया है बेटा, ऑन अब तैयार हो जाओ, बेटा मोहम्मद अब तैयार हो जाओ। दोनों शहजादे तैयार हुए, एक बार फिर जैनब ने रोक दिया, कहा कि नहीं भैया मेरी एक ख्वाहिश और, बच्चे बहुत छोटे, 9 साल का बच्चा, बच्चे बहुत छोटे, 10 साल का बच्चा, लेकिन जाएंगे पूरी शान के साथ और बड़ी हिफाजत से, कई सालों से मैंने तमानत करबला के लिए रखी है। ये कहे कि जैनब ने संदूक खोला, 2 अमामे निकाले, एक अमामा हुसैन के हाथ में दिया, कहा ये इनके दादा जाफर तैयार का अमामा है, भैया अपने हाथों से मेरे ओन को जाफर तैयार की छवि बना। दूसरा अमामा दिया, कहा ये मेरे बाबा और इनके नाना हैदर कर्रार का अमामा है, अपने हाथों से मेरे मोहम्मद को मेरे बाबा हैदर कर्रार की छवि बनाओ। अजीब शान से ये बच्चे चले, बहुत छोटे हैं मगर एक छवि है जाफर तैयार बन के गया, एक छवि हैदर कर्रार बन के गया। तो अब मैं क्या बताऊं, कैसा जिहाद किया होगा लश्कर यजीद, अलमान अलफीज, अलमान अलफीज। और एक मरतबा उमर साहब ने कहा कि 30,000 सिपाहियों दोनों शहजादों पे इस तरह से टूट पड़ो कि इन्हें एक दूसरे से अलग करो, एक को यहाँ घोड़े से गिराओ, एक को वहां घोड़े से गिराओ। थोड़ी देर गुजरी, मैदान करबला में मोहम्मद की आवाज आई, मामू मेरी मदद को आना। मौन की आवाज आई, मामू अदरिकनी मेरी मदद को आना। अब्बास जिंदा, हुसैन और अब्बास शेरे नर की तरह झपटे। हुसैन ने कहा, अब्बास एक को मैं उठाता हूँ, एक को तुम उठाओ। ऑन को हुसैन ने उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया, दोनों लाशें लेके आ रहे। मगर लश्कर यजीद का एक तरीका होता था, जैसे ही कोई शहीद घोड़े से गिर के मारा जाता था, वो लोग खुशी के शादियाने बजाते थे और इधर खेमे में बीवियों को शादियानों की आवाज से पता चल जाता था, अरे हमारा मुजाहिद मारा गया। अब इधर ओनो मोहम्मद के लाशे हुसैन ला रहे, अब्बास ला रहे, मगर बीबियों को कैसे पता चला? बाजे बजने लगे, खुशी के शादियाने बजने लगे, बीबियों ने मातम शुरू किया। जैनब ने जुमला कहा जो मीर अनीस ने अपने मरसिये की बैत कही है, जो मीर अनीस के मरसिये की बैत है, बाजे वालों की सदा जेर कनात आती है। जैनब बीबियों से कह रही है, जैनब बीबियों से कह रही, बाजे वालों की सदा जेर कनात आती है, कैसे लाशे मेरे बच्चों की बारात आती है। अरे इसी दिन के लिए मैंने ओनो मोहम्मद को पाला। एक बार हुसैन दोनों लाशें लेके आए, एक बेटा मर चुका है, एक बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। एक मरतबा हुसैन ने कहा, जैनब जब से आनो मोहम्मद करबला में आए हैं, तूने अपने बेटों को कभी गले से नहीं लगाया है, अरे मेरा दिल चाहता है आज एक बार तो गले से लगा ले। जैनब फिर माँ तो है ना, एक बार झुकी, आन को गले से लगाया, आन मर चुका था, मोहम्मद को गले से लगाया, मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा था, माँ के गले से लगाया, मोहम्मद ने आंखें खोली, अम्मा अब तो हमसे खुश हो गई ना, अम्मा अब तो हमसे राजी हो गई, वाह मोहम्मद वाह ओना। आजादारों अपनी जगह से आज खड़े हो जाइए, ओनो मोहम्मद का मातम शुरू।